मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम कनि मंगलम पिंग कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम दीन भुवन में सास भीत राग भी ज्ञानता शिव स्वरूप शिव कार नमः प्रयोग समारि के। हम समय दृष्टि के 8 अंगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और हमने लास्ट टाइम रिवीजन किया था नेशन के अंग का अष्टपहर ग्रंथ के दर्शन पहर के हिसाब से, और उसपे हमने देखा था कि जिसको शंका होती है उसको शंका के साथ अवश्य भय होता है, डर होता है, तो इसके लिए सम्यक दृष्टि को साथ भय नहीं होते और मिथ्या दृष्टि के साथ भय होते हैं सब प्रकार के, राइट। और ये भी देखा था सम्यक दर्शन के 8 अंग ये व्यवहार से सामने वाले को या स्वयं को सम्यक है कि नहीं है तो उसके भी चिन्ह कहे जाते हैं, भी हमको पहचान करनी हो कि किसी को सम्यक है कि नहीं है तो फोरमोस्ट थिंग है कि उसको जिनेंद्र देव के आगम में कितना श्रद्धा है, उसका जीवन कैसा है, उसमें आकांक्षाएं हैं भोगों की कि नहीं, उसमें मूर्ताएं चल रही हैं, तो ये सब सम्यक दृष्टि के बाहरी चिन्ह है, राइट। पिछली क्लास से किसी को कोई शंका, किसी को कोई क्वेश्चन? हेलो,
हाँ नहीं,
हेलो, हाँ, 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 अंग की बात हमने करी थी, उसके बाद निकांक्षित अंग, तो निकांक्षित अंग मतलब उसको किसी चीज की अभिलाषा नहीं है, जिन वच में शंका न धार विषभव सुख वांछा भाने, उसके भव के सुख में संसार के सुखों में उसको कुछ भी इच्छाएं नहीं है, भोगों की अभिलाषा नहीं है। अब इस मन को क्या क्या लेना है, इसमें जो आगे मिलने वाले भोग है उसकी भी उसको इच्छा नहीं है, वर्तमान में जो भोग मिल रहे हैं उनको भी वो बिना किसी वासना के, मतलब बहुत गृद्धता के साथ लुब्धता के साथ नहीं भोगता है, और जो पूर्व भोग रहे हैं उनकी भी उसको स्मृति या याद नहीं आती ऐसा कि वो कितना अच्छा भोग थे, वो तब वाले टाइम अच्छा था, तब ऐसा होता था तो कितना बढ़िया रहता था, तो उसको पूर्व में भोगे गए भोगों की भी इच्छा नहीं होती, वर्तमान के भोगों में उसकी विरक्तता बनी रहती है बहुत उदासीन भाव से, मतलब उनसे बहुत बेज्ञान करता हुआ उनको भोग लेता है और आगामी काल की किसी भी भोग की इच्छा उसको नहीं रहती, उसको संसार से दुख लगा है, संसार में उसको सुख की एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि मैं यहाँ से सुखी हो जाऊंगा, तो जब एक्सपेक्टेशन नहीं होती तो वो संसार के भोगों को सुख के लिए देखता ही नहीं, वो उदय प्रमाण चलता है, तो जैसा जैसा जो जो आता जाता है वो उसमें संतुष्ट होकर खुश होकर प्रसन्न रहकर भोगता भी जाता है और वहां से ध्यान भी करता जाता है, ये उसका कांक्षित अंग है सम्यक दृष्टि का। वो ऐसा नहीं है कि पुण्य परिणाम नहीं करता, और पुण्य परिणाम से तो संसार के सुख मिलते ही है, जैसे व्रत आदि करता है, जिन की पूजन करता है, ये सब कुछ करता है, वो अच्छे काम कार्य करता है, दया करेगा, लोगों का उपकार करेगा, राइट, ये सारे काम करेगा जिससे पुण्य सामग्री मिलती है, लेकिन उस कार्य को करते हुए उसको ये शर्त नहीं होती कि मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ तो मेरे साथ अच्छा होगा, वो अच्छा इसलिए नहीं करता कि मुझे पुण्य का उदय फिर प्राप्त होगा, मुझे मैं यदि ऐसा करूंगा तो मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, जैसे कि हम लोग आजकल क्या करते हैं, यदि हम हेल्दी फूड खाएंगे तो बॉडी हेल्दी रहेगी, हम यदि पानी को फिल्टर करके पिएंगे तो बॉडी हेल्दी रहेगी, राइट? तो हम पानी छान कर पी रहे हैं, क्यों पी रहे हैं? क्योंकि शरीर के लिए अच्छा है। यदि हम वीगन डाइट को या वेजिटेरियन डाइट को हम रात को नहीं खाते हैं, उसको यदि हम अपना रहे हैं, तो क्यों अपना रहे हैं? क्योंकि हेल्दी लाइफ स्टाइल है, अच्छा होगा, राइट? करेक्ट। सम्य दृष्टि की ये नहीं होता, उसके पानी छानना इसलिए होगा क्योंकि जीवों की रक्षा है, उसके रात में भोजन नहीं करना इसलिए नहीं होगा कि मेरी बॉडी थोड़ी फिट रहेगी, अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छे से हो जाएगा, नहीं, ये वाले उसके कारण ही नहीं। ऐसे जलदेव की पूजन इसलिए नहीं क्योंकि बहुत अच्छे परिणाम होते हैं, विशुद्धता बढ़ती है, नहीं, उसको जलदेव की वितरागता, उनकी सर्वज्ञता पसंद आ गई है, राइट? तो वहां पर उसके डिफरेंस होता है। उसके व्रतादि शुभ क्रियाएं भी होती है, लेकिन उनका ट्रांजेक्शन नहीं होता कि ये करूंगा तो मुझको ये मिलेगा, कोई डील नहीं होती। वो उसकी सहज होती है, उसकी भूमिका में कषायों का जो लेवल है वो इतना नीचे आ गया है कि उसको नीचे क्रियाएं नहीं होती। अच्छे विचार होते हैं, अच्छी क्रियाएं होती हैं, तो उससे अपने आप पुण्यवान बनता है और पुण्य की उसको कोई कीमत नहीं है, तो उसकी वैल्यू नहीं करता, वो संवर और निर्जरा का ही प्रयत्न करता है, ऐसा उसको महत्वाकांक्षित अंग होता है। हेलो, राइट। हाँ, तो मतलब कोई भी हो वो किसी आकांक्षा से किसी से कुछ मांगता नहीं है, ये उसका निकांक्षित अंग है। फिर तीसरा, मैं निर्विचिकित्सा की बात करी थी, तो जैसे छाबरा जी ने अष्टपाह के दूसरी गाथा की टीका में वहां पर इसका भी स्वरूप लिया और उन्होंने बहुत सुंदर इसकी व्याख्या की। विचिकित्सा किसे कहते हैं? अपने को हाँ,
ये निकांक्षित अंग में अभी आपने तीन देव की पूजा की, अभी हम लोग वैसा क्या है कि हमारा आवश्यक है तो वैसे वो रूटीन हमारी टेव ही होती है कि हाँ कि सुबह उठकर पूजा करनी है, तो उसमें वैसे हमको कांक्षा तो नहीं है, वो रूटीन ऐसा है कि बस ये हमको करना है, ये हमारा आवश्यक है और ये हमारे लिए हितकारी, वैसे हितकारी भी ऐसा नहीं, परंतु वो यू नो आउट ऑफ रूटीन हम करते ही है, तो उसमें हमारी छुपी हुई कांक्षा होएगी, वो पता नहीं, पकड़ में नहीं आता।
देखिए, एक तो हम लोग इतने अच्छे से हमने तत्वाभ्यास किया है, स्वाध्याय किया है, तो हम लोग तो बहुत मेंटली ट्रेन्ड हो गए हैं, तो हम भगवान से कुछ मांगते भी नहीं,
राइट?
हम लोग के भाव नहीं होते भगवान से कुछ मांगने के,
नहीं,
तो वो वाली बात एकदम ठीक है कि हमको अब हमें खुद ही नहीं होता हम भगवान से क्या मांगे, राइट? और हम भगवान को, बट दूसरी इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो हमको लाइक उनकी प्रतिमा अच्छी लगती है, कितनी सुंदर मूर्ति है, कितने सुंदर, कितनी भव्य उनकी मुद्रा है, लेकिन हमको ये पसंद आता है, देन अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम। वो पसंद आना चाहिए, वो तो है जिनेंद्र देव की मुद्रा, बट वो जैसे यदि हमको भगवान की मूर्ति की आंख, उनकी स्माइल, उनकी गंभीरता, उनकी सुंदरता, उनका हाथ पर हाथ रखे रहना ये पसंद आता है, तो मतलब हमको आईने में देखकर अपना चेहरा भी पसंद आता होगा क्योंकि हमारे पास भी आंखें, नाके, कान है, राइट? तो ज्ञानी जीवों को भगवान की वितरागता और सर्वज्ञता पसंद आती है, उनके शरीर की स्तुति नहीं होती उनको। तो पूज्यत्व का कारण जो पंडित गोदर्मन जी ने लिया, तो उन्होंने बोला कि ज्ञानी जीव तो सबसे पहले भगवान की वीतरागता और सर्वज्ञ पर, जो उनके पूज्यत्व का कारण है, उस पर रीझे हुए हैं, तो उनको भगवान की बाहर की मुद्रा कैसी है वो तो सुंदर लगेगी ही, यदि अंदर का हमको माल पसंद है तो पैकेजिंग भी कोई बात नहीं, वो तो अच्छी लगेगी हमको, तो वो नहीं है। लेकिन हमारी मूल प्रीति, हमको लेना देना किससे है कि भगवान की वीतरागता और सर्वज्ञता, तो हमको भगवान से कुछ मांगना तो नहीं होता, लेकिन हमारी भगवान की जो भक्ति होती है वो सहज होती है या वो रूटीन में चलकर होती है, मतलब वो एक महिमा बहुमान आकर होती है कि चलो अभी टाइम हो गया मंदिर का, मंदिर चलते हैं, इसलिए होती है। वो हमको वो सब का खुद का है, खुद को देखना है राइट। बाकी हम लोगों के इतने अभ्यास से इतना तो हो गया कि हम किसी से मांगने का यत्न नहीं रखते, बट
नहीं
इसकी भी परीक्षा तब होती है जब कोई हम बहुत घोर विपत्ति में फंस जाए, कुछ बहुत ही बुरा पाप करने आ जाए, उसके बाद भी यदि हमारी इच्छा ना हो, क्योंकि वो आएगा अभी आगे अमूर दृष्टि अंग में राइट। तो निकांक्षित मतलब ये कि हम यदि आज चलो दशरक्षण पर्व चल रहे हैं, हमने बहुत अच्छे से मनाए, तो इससे हमको ऐसा तो नहीं हो गया कि नहीं कितना अच्छा हमारे भाव बढ़ रहे हैं, अच्छा कर्म बन रहे होंगे। तो हम अपनी पर्याय में कितनी निर्मलता प्रकट हो, रास्ता का अंश प्रकट हो, उसके लिए ये सारी क्रियाएं तो करते हैं, लेकिन हमें पुण्य बंध कितना हो गया कि हमको अंदर से ऐसा लग रहा है तो फिर कांक्षा है
नहीं, वो
राइट।
तो मैं नहीं हूँ वैसा पुण्य बंद की तो नहीं होती, परंतु पता नहीं अंदर बैठी कई दफा हमें पता भी नहीं चलता कि क्या इतना
तो ये इसमें निकांक्षी तंग में तो उसको पूर्व के भोग भी रोज भूल जाता है कि नहीं, अब जो भोगे जो भोग पहले उनका ना हो सुमिरन, मैं राज्य संपदाया पद इंद्र का ना चाहूं, जो मैंने पूर्व में भोग भोग लिए हैं उनका सुमिरन नहीं हो, क्योंकि वो भोग तो दोबारा नहीं मिलते, लेकिन उनके बारे में सोचने से वैसे बंध दोबारा हो जाता है, तो बहुत घाटे का सौदा है, तो उन भोगों की स्मृति नहीं करता ज्ञानी, और व्यर्थ में कल्पना ही नहीं करता कि मैं अभी ऐसा हो जाऊंगा फिर ऐसा हो जाएगा फिर ये कर लूंगा, तो जो हमको बैठे बैठे बहुत बड़े हम खासे खा पहुंच जाते हैं, ये ज्ञानी को व्यर्थ असंभव कल्पनाएं नहीं होती। मैं राज्य संपदाया पद इंद्र का ना चाहूं, मुझे इन सबसे कुछ लेना देना नहीं, मुझे आज मतलब जिन धर्म निर्मुक्तो मा भवे चक्रवर्ती अपि चेतोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासितः, नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना, मुझे आज जिन धर्म मिल गया है तो मुझे और कोई पद नहीं चाहिए, और हाँ यदि जिन धर्म के बिना चक्रवर्ती का पद मिल रहा है तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन यदि मैं गरीब हूँ दरिद्र हूँ और फिर भी जिनेन्द्र देव के चरणों की छाया मिली हुई है तो मुझे कोई नहीं अपता, वो मैं एकदम खुशी खुशी आराम से हूँ, मुझे संतुष्टि है, तो उसके जीवन में बाहर की आकांक्षाएं है ही नहीं, एकदम बाहर के संसार, श्रीमद जी ने बोला ना बाहर की बगिया सूख जाती है, हम अंदर की बगिया को खाने देते हैं, तो वो अंदर की बगिया में ही इतना मस्त है उसको, बाहर का क्या पूरा बाग सूख रहा है कि नहीं उसको फिर उस मस्ती में पता ही नहीं पड़ता, तो ये उसकी निकांक्षता है। संसार में सब कुछ सार विहीन लग रहा है, या कुछ भी काम का नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं, ये निकांक्षितन ठीक है। फिर आता है निर्विचिकित्सा। अब इसका क्या यहाँ पर विश्लेषण किया, विचिकित्सा मतलब अपने को इतना ऊंचा मान लेना, इतना श्रेष्ठ मान लेना कि दूसरा हमें कुछ दिखे ही नहीं, उसकी पीड़ा उसकी समृद्धि उसके गुण कुछ भी ना दिखे, तो अपने में अपने गुण की महत्ता बुद्धि और अपने को श्रेष्ठ मानना, और उसके कारण ऑटोमेटिकली अपन बड़े हो जाएंगे तो दूसरे अपने आप छोटे हो जाएंगे राइट। इसको बोलते हैं विचिकित्सा, क्या स्वयं को इतना बड़ा मान लेना कि दूसरे को हम कुछ गिने ही ना, और जब ऐसा होता है तो दूसरे की गुण भी नहीं दिखते, उसकी शरीर की स्थिति भी नहीं दिखती, उसकी कितनी दरिद्रता है कितनी परेशानी है कितना पाप का उदय है ये नहीं दिखता, और ये नहीं दिखता तो उसकी निर्विचिकित्सा अंग नहीं होता, वो एक रूखा बहुत ही इनसेंसिटिव मुमुक्षु बनने की कोशिश करता है, फिर मतलब उसने पढ़ा तो सब है लेकिन उसका पढ़ा हुआ उसको संवेदना विहीन बना देता है कि चलो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, सब अपने काल में होता है और जो करे उसको भोग नहीं पड़ता है, तो भाई आपके पाप कौन है, मतलब आपने किया होगा पुराना पाप तो अब भोगो, तो ऐसा सम्यक दृष्टि की भाषा नहीं होती। ये बात एकदम ठीक है कि संसार में जिसको जो कुछ भी दुख है वो उसके पाप परिणाम का ही फल है, इसमें कोई दो राह नहीं राइट। लेकिन वो पाप का परिणाम उसको देने की जो शक्ति है वो कर्म की है। हमने तो अपने तत्वाभ्यास से जाना कि सारे जीव ज्ञान चेतना में है और सबको सुख दुख का अनुभव होता है। मैं जीव हूँ, मुझे सुख दुख का अनुभव होता है, बाकी सारे जीव है उनको सुख दुख का अनुभव होता है। तो मैं सुखी होता हूँ तो प्रसन्न रहता हूँ, मैं दुखी होता हूँ तो बहुत पीड़ा में होता हूँ। तो जैसे मुझे दुख पसंद नहीं, ऐसे बाकी जीवों को भी पसंद नहीं होगा, उनको भी पीड़ा होती होगी। तो ज्ञानी जीव तो दूसरों को दुखी नहीं दिख सकते, दूसरों को दुख, उनको पता है कि भाई इसको जितना दुखी करना है वो जिम्मेदारी कर्म की है। हमें तो हमारे सामने कोई दिखा तो कैसे इसका दुख का निवारण हो सके, हमें तो ये बुद्धि करनी है। ज्ञानी जी वैसा विचार करते हैं, देखो इसके पाप का उदय हुआ तो ये इतना दुखी है, इसकी ऐसी हालत है, तो मेरे पाप का उदय होगा तो मेरी भी ऐसी हालत होगी, कैसा होगा फिर? तो वो उसको वहां पर उस हालत से निकालने का प्रयत्न करता है, ये उसके निर्विचिकित्सन होता है। ऐसा नहीं सोचता कि यार मैं सुंदर हूँ, मैं संपदावान हूँ, मैं दीन हूँ, रंग हूँ, मेरी बराबरी कौन करेगा। तो ऐसा वो मतलब आई एम सुपीरियर टू एनीवन एंड समबडी इज इंफीरियर टू मी, ये वाली बात सम्यक दृष्टि से नहीं होती। और उसमें दीवान अमर सिंह की कहानियां तो कितनी फेमस है। वो कोई गरीब होता था या किसी की हालत अच्छी नहीं है, वो तो दीवान थे वहां के अपने राज्य के, तो मतलब ट्रेजरर थे वो बहुत बड़े, राइट? तो वो तो बहुत बहुत बड़े सेठ थे, और जो जिनका भी उनको पता होता था कि इसके घर में परेशानी है, इसको चाहिए, तो मतलब कितना वो उनके घर में मिठाई भिजवा देते थे कहीं से भी, ये नहीं पता पड़ता था कि कहाँ से आई। और लोग जब वो मिठाई लड्डू खाने बैठते थे तो उसके अंदर से सोने की अशर्फियां निकलती थी, तो किसी को पता नहीं पड़ पाता था कि किसने भेजी। और सामने तो से सामने वाले के स्वाभिमान की भी रक्षा हो गई कि देखो किसी ने नहीं पता नहीं कहाँ से आई, तो उसको भी किसी के प्रति अब झुकना नहीं है कि अरे आपने हमारी इतनी मदद करी, तो उसके स्वाभिमान की भी रक्षा हुई और उसकी मदद भी हो गई। तो ऐसी उनकी इतनी मतलब बड़ा उनका हृदय इतना विशाल होता है, वो किसी की मदद इसलिए नहीं करते कि मैंने तुम्हारी मदद करी या मैंने यहाँ पर इतना ये वाला जो और गरीबों का आश्रम है ये मेरे द्वारा चलाया जा रहा है तो मेरा नाम चलेगा, ऐसा नहीं होता था, राइट? तो ये निर्विचिकित्सा अंग है।
बेंश्री का भी वैसा सुना है, उन लोग बिना किसी की स्थिति बराबर ना हो गए कि जो ब्रह्मचारी बहन हो गए तो वो भी उनको पता ना लगे वैसे उसके घर वो चीजें पहुंचा देते थे।
अरे बराबर, तो ऐसी सुंदर उनका मतलब कितना उजला हुआ उनका अंतरंग होता है कि मतलब आप देखिए विवेक कितना है। ये तो सोच ही रहे कि सामने वाले को जरूरत है और हम उसकी मदद करते हैं, फिर ये भी सोच रहे हैं कि देखो मदद करेंगे तो उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी। कितना ज्यादा सोचते हैं हम, तो लाके नहीं चलो ठीक है तुम्हें ये चाहिए चलो मैंने दिया जाओ खुश रहो, लाइक ये नहीं बिल्कुल पता सामने वाले की स्वाभिमान का भी कितना ख्याल, उसको कौन देगा कौन नहीं देगा कौन कैसे देगा क्या होगा, ये सब ऐसे ही क्या बोलते हैं भामाशाह हुए जिन्होंने महाराणा प्रताप को पूरे सबसे बड़े दानवीर कहे जाते हैं भारत के, और राजस्थान में तो उनके नाम से कितनी स्कीम्स चलते हैं गवर्नमेंट की। भामाशाह वो जैन थे, राइट? बहुत पैसे, और उन्होंने पूरा जो हमारा महाराणा प्रताप का जो आजादी का जो हमारा उत्सव चला था मुगलों से लड़ाई का, तो पूरा जो वॉर था वो उन्होंने फंड किया था, राइट? तो हर एक फ्रंट पर लाइक ये तो मतलब सम्यक दृष्टि कुछ भी हो मतलब जो भी तत्वज्ञानी है उनकी पूरी वो बहुत विवेकी होते हैं। तो देश के प्रति क्या जिम्मेदारी है, समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है, परिवार के प्रति क्या जिम्मेदारी है, ये सबको वो बहुत अच्छे से समझते हैं, उनमें विवेक बहुत होता है। तो ये निर्विचिकित्सा मतलब कोई बीमार है तो उसको सहजता से उपचार कर दिया, किसी की ड्रेसिंग होनी है, किसी को कुछ फोड़ा हो गया है, तो उसको मतलब जान ही रहे तो फिर कोई बात नहीं, तो शरीर की दशा है। हमारे होती तो हमारे भी ऐसे ही होती, कोई अलग तो नहीं होती। हमारे शरीर से भी ऐसे ही मवाद पीप ये सब निकलता, मल निकलता। तो वो बहुत एक विचारक की तरह, एक बहुत प्रौढ़ ऊंचे व्यक्तित्व के बनी वो होते हैं, और उसके कारण उनके निर्विचार के बनता है। तो ये उनकी निर्विचिकित्सा है, और इसको मतलब बहुत बहुत विचार हो, अंदर तैयारी हो, तो ये हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता। हमने तो थोड़ा सा बस 100-101 रुपए भी कहीं देकर आएंगे तो उसकी रसीद हमको चाहिए होती है, और कहीं दिख रहा हो नाम तो फिर नहीं लेके तो प्रॉब्लम हो जाती है। और कहीं पर मतलब कितना हमको फर्क पड़ता है इन सबसे, समय दृष्टि को ऐसा नहीं होता, उसको बहुत ये सारी चीजें बहुत, एक तो पहले विचार से नश्वर है उसके लिए, इन सब में कुछ नहीं, और उसको वो जीवों की संवेदनाओं को भी समझता है, तो उसको पहले के भी कम हो जाए, इसका दुख कम हो, बाकी जो है वो ठीक है। तो ऐसा ही निर्विचिकित्सा, 3 अंग हुए, ने संकेत ने कांक्षित निर्विचिकित्सा। चौथा अमूर्त दृष्टि अंग है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
आपकी आवाज ना थोड़ी, मैंने तो अपना वॉल्यूम एकदम बढ़ाया है, तो दूसरों को पता नहीं कि सुनाई बराबर है कि थोड़ा सा आपका फोन के।
मूर्ख दृष्टि मतलब मूर्खता, मूर्खता मतलब पागलपन, मूर्खता। मूर्खता किसको कहते हैं? अतत्व में तत्व का श्रद्धा, जैसे कि सामने रस्सी पड़ी हुई है और मैं एकदम डर के ऊपर चढ़ जाऊं, अरे सांप सांप सांप, तो मुझे लोग पागल बोलेंगे। अरे सामने रस्सी पड़ी है, अंधेरा नहीं है, तुम्हें दिख रहा है, और तुम इसको सांप बोल के ऊपर पेड़ पर चढ़ गए डर कर। तो अतत्व यानी जो है नहीं, उसमें तत्व का यानी कि है, ऐसा श्रद्धा ये पागलपन है, ये मूर्खता है। ये जिसके लिए होती मतलब जिसके अतत्व में तत्व का श्रद्धान नहीं होता, जिसका तत्व में तत्व का श्रद्धान होता है, उसको अमूर्त दृष्टि अंग होता है, राइट? तो 3 प्रकार की मूर्ताएं होती हैं, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और धर्म मूर्ता। 3 प्रकार की मूर्ताएं होती हैं, यानी 3 प्रकार का पागलपन पाया जाता है, क्योंकि जगत में जो काम की चीज है वो 3 ही है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि सैमसंग के फोन अच्छे होते हैं कि एप्पल के होते हैं या किसी और कंपनी के होते हैं, ठीक है? ये मतलब मैं भी मानता हूँ कि एप्पल के अच्छे होते हैं, और आप भी मानते हो कि सैमसंग के होते हैं, प्योर मानते हैं किसी और कंपनी के अच्छे होते हैं, तो ये मूर्खता नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? आप एप्पल के अच्छे मान लो, आपको एप्पल के फोन पसंद है, मुझे सैमसंग के फोन पसंद है, ये मूर्ता नहीं। लेकिन आपको कौन सा देव पसंद है, यानी कि जब आपके ऊपर परेशानी आती है तो आप किस देव की शरण में जाते हो? अब इसमें प्रॉब्लम है, कॉर्पोरेट में मैं किस कंपनी का शेयर्स को ले रखा हूँ, और मैंने किस कंपनी को, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उसको कॉन्स्टेंटली फॉलो करता हूँ, इट डजंट मैटर। या फिर मैं किस सेलिब्रिटी को फॉलो कर रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो नॉट अ क्वेश्चन, वो भी बात नहीं है, राइट? मुझे कौन सी सिटी पसंद है, लाइक आई लाइक टू, मुझे कौन सी कंट्री पसंद है, मुझे क्या, ये इससे फर्क नहीं, मुझे राजस्थान ज्यादा पसंद है इंडिया में, या मुझे हिमालयाज में जाना ज्यादा अच्छा लगता है, इसमें कोई पागलपन वाली बात नहीं, ये आपकी खुद की चॉइस है, इंडिविजुअल, राइट? इन सबसे मूर्ता का लेना देना कुछ भी नहीं है। ये सबकी अलग अलग होती है, आपको किस टाइप की ड्रेसिंग पसंद है, आप किस टाइप का फूड पसंद करते हो, आपको ये सब हमारी पर्सनल चॉइसेस है, राइट? इसमें कुछ धर्म का कुछ लेना देना नहीं, उससे हमारे श्रद्धान का भी कुछ लेना देना नहीं। लेकिन जिससे हम सगे जा सकते हैं, जिससे हमको डेंजर है, वो 3 टाइप की चीजें होती हैं। एक, हम देव में अदेव में देव का श्रद्धान करके पागल बन सकते हैं, मूड बन सकते हैं। दूसरा, जो गुरु नहीं है, कुगुरु है या अगुरु है, उसमें गुरु मान ले तो दिक्कत हो सकती है, और एक जो धर्म ही नहीं है उसमें धर्म मान ले तो प्रॉब्लम हो सकती है। 3 टाइप की, इसलिए इन 3 प्रकार की मूर्ताएं, इनका वर्णन जगदगम में मिलता है, राइट? सम्यक दृष्टि की 3 मूर्ताएं नहीं होती, उसके जो देव होते हैं तो सच्चे देव में ही देव का श्रद्धान होता है, सच्चे गुरु में गुरु का श्रद्धान होता है और सच्चे धर्म में धर्म का श्रद्धान होता है। वो इन तीनों में ठगा नहीं जाता। तो जब कुगुरु की या कुदेव की चर्चा आती है तो सीधी बात करते हैं, कुदेव की बात करके क्या फायदा, हम सच्चे देव के लक्षण बता देते हैं, इसके अलावा जो कोई भी होगा वो सब कुदेव हो जाएंगे, राइट। तो पंडित जी साहब ने इसमें सच्चे देव के लक्षण बताए। सबसे पहला कि देव जो होता है वो निर्दोष होता है। दोष मतलब क्या, राग द्वेष को दोष बोलते हैं। तो राग द्वेष मोह रहित होता है मतलब निर्दोष, और उसको पॉजिटिवली बोले तो वितरागी, राइट। पहला होता है कि उसके कोई दोष नहीं होता देव के। हमारे भगवान जो भी होंगे उनमें क्या नहीं होगा, दोष नहीं होगा। और दूसरा वो निरावरण होता है, उसके किसी भी तरीके का आवरण नहीं होता। आवरण मतलब ज्ञान कम हो ज्यादा हो, ऐसा ढका हीनता और वृद्धि को लेकर ज्ञान नहीं होता, उसका एक सा पूरा ज्ञान होता है, ये निरावरण यानी सर्वज्ञ। तो जो वितरागी और सर्वज्ञ हो वो देव है। इसके अलावा किसी अन्य में देव बुद्धि करनी वो सब देव मूर्ता है, राइट।
हाँ
ठीक है। इसमें सारी चीजें सच्चे देव में भी, यदि हमको लगेगा मैंने तेरे ही भरोसे महावीर जगत पे नियर डाल दी है, भगवान आप मुझे बचा लेना, भगवान पारस नाम हम आपके इस भरोसे, यदि ये वाली बुद्धि है देव में भी, वितरागी सर्वज्ञ देव में की शांतिनाथ भगवान से ये करो तो ये होता है, और आदिनाथ भगवान की स्तुति भक्तांबर की पढ़ लो तो ये हो जाता है, ये सब मूर्ता हो जाएगी, ये पागलपन हो जाएगा। सच्चे देव में उनकी वितरागता और सर्वज्ञता को ही देखना और कुछ नहीं देखना, ये सही है। और इसके अलावा यदि हम भगवान को किसी और नजर से, शांतिनाथ भगवान ये कर, कौन से ग्रहों को शांत करते हैं, कौन से ग्रह के स्वामी, इनकी कौन सी शासन देवी है और वो शासन देवी क्या कर देती है, तो ये 20 पंथ हमने में बहुत चलता है। हर एक भगवान की शासन देवी होती है, रक्षक होते हैं और उनकी भी पूजन होती है, फिर भगवान की होती है फिर उनकी भी होती है। ये भगवान तो कुछ देंगे नहीं लेकिन ये देव हमें दे देंगे, इनके मानने वालों की रक्षा करते हैं ये देव, तो ये मूर्ता है। इसको हमने कई बार बहुत डिस्कशन कर लिया है।
हमारे लोगों में भी कई दफा कोई वैसा क्या है कि कुछ प्रसंग होता है तो वो भी कई दफा कई लोग वो देव को के यहाँ के ये शांतिनाथ की करेंगे पूजा के, ये पार्श्वनाथ भगवान की करेंगे के, तो वो भी मूर्ता में तो आ गया ना वैसा।
नहीं वो तो आप एक साथ 24 सितंबर की तो नहीं हो सकती, तो कभी कभी कर लेंगे, लेकिन आप कोई दिन जैसे कि हिंदुओं में परंपरा होती है कि मंगलवार के दिन इनके मंदिर जाएंगे गणेश जी के शिव जी के, उनके में दिन होते हैं ये वाले दिन ये वाली माता जी का, ऐसा करके करते हैं वो। हमारे यहाँ किसी भगवान का दिन नहीं है। हाँ किन्नी यदि पंच कल्याणक होते हैं तो हम उस दिन उनकी पूजन करते हैं, कोई भी कल्याणक हो, गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक।
सपोजिंग कहीं वो घर के, वैसे सुना है मैंने तो गई नहीं मैं कहा किसे, परंतु वो घर का वास्तु के करते हैं तो फिर वहाँ शांतिनाथ भगवान की पूजा करते हैं तो उसमें अंडरलाइन
कितना डिमीनिंग हो गया ना, कितना महावीर भगवान की नहीं कर सकते, मतलब वो शांति नहीं देंगे, शांतिनाथ भगवान देंगे, तो वो वही बोल रहा हूँ ये रूढ़ी से आ जाता है, ये बहुत बढ़ता जा रहा है, राइट। लेकिन इसमें थोड़ी सी क्या बोलेंगे, एकदम एक नाजुक सी एक लाइन है इसमें कि सम्यक दृष्टि के भी ऐसा हो सकता है कि उनको पार्श्वनाथ भगवान बहुत अच्छे लगते हो, आदिनाथ भगवान बहुत अच्छे लगते हो, राइट। किसी किसी को मतलब जैसे कि किसी का जन्म ही अयोध्या में हुआ या वाराणसी में हुआ तो उनको शायद वाराणसी में हुआ तो पार्श्वनाथ भगवान पसंद आ गया, बचपन से ही उनकी किसी ने गीत सुने हो, लेकिन इसको सम्यक के चल मल अगार दोष में लिया है, बराबर के भगवानों के बीच में उसमें कोई भगवान ज्यादा अच्छे लगने बट वो दोष है, लेकिन वो सम्यक के साथ हो सकता है, लेकिन ये मिथ्यात्व हो जाएगा कि नहीं ये वाले भगवान ये देंगे और दूसरे भगवान नहीं देंगे, तो ये मिथ्यात्व हो जाएगा, ये मूर्ता हो जाएगी। सच्चे देश में भी मूर्ता हो गई कि भगवान सामने थे लेकिन हमने उनकी वितरकता सर्वज्ञता को ना देखकर ये हमको शांति घर पर कुछ कर जाएंगे ऐसा हमने माना था, ये गलत है।
तो रूढ़ी चलती है तो वो उसमें
वो गलत है, वो हमको हमको नहीं जाना, रूढ़ियों पर हमको नहीं जाना, हमको विचार से करना है। तो यदि आप ऐसे कर रहे हो कि ठीक है शांतिनाथ भगवान की पूजन करेंगे चलो ठीक है तो ठीक है, लेकिन शांतिनाथ भगवान की पूजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो शांति देते हैं, नहीं
घर में शांति देवे वैसा वो
अभी है, वो तो आप आपकी भगवान की पूजन कर, ऐसे तो बहुत अच्छे अच्छे नाम है हमारे भगवानों के, तो आप महावीर भगवान की पूजा, आप सन्मति नाम है उनका तो आपके घर में सन्मति रहेगी, आप और भी कौन से नाम होंगे, शीतलनाथ भगवान की पूजन कर लो घर में शीतलता रहेगी, राइट, धर्मनाथ भगवान की पूजन कर लो घर में हमेशा धर्म की महक रहेगी, अनंतनाथ भगवान की पूजन कर लो आपके घर में अनंत समृद्धि बढ़ती जाएगी, तो ऐसे तो फिर हर भगवान का कुछ ना कुछ उत्तर निकल के हो जाएगा ना।
हाँ।
अजितनाथ भगवान की पूजन करो घर में किसी की हार नहीं, आप जो करोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, आप जीतते जाओगे। संभवनाथ भगवान की पूजन कर लो, कुछ इम्पॉसिबल नहीं होगा आपके घर में, सब कुछ संभव हो जाएगा। अभिनंदन भगवान की पूजन कर लो आपके घर में सबका अभिनंदन होगा, लक्ष्मी का, सुख खुशियों का। तो ऐसे तो ये सब तो हम जो कनेक्ट करके बताएंगे तो ऐसे तो हम किसी में भी कुछ भी अच्छा अर्थ निकाल सकते हैं, राइट।
हाँ।
तो ये तो किसी भी भगवान में कुछ ना कुछ हो जाएगा, जो हम 24 भगवान की जब स्तुति पढ़ते हैं तो वो उसमें तो भगवानों के ऐसे अर्थ निकालते हैं ना अच्छे से।
हाँ।
ये जो भगवान ऐसे हुए तो कुंजुनाथ भगवान कुंजवादी जीवों की भी रक्षा का दे दे जो उपदेश, तो वो तो हम वैसा, लेकिन भगवान के सर्वोपरि गुण तो उनकी वितरकता और विज्ञानता है। तो यदि ये भावना है कि हम इस घर में हैं और कब हमें इस घर को छोड़ना पड़े वितरकता को लेकर, इसलिए हम वितरागी देश की पूजन से इस घर में प्रवेश करते हैं, तो ये ठीक है इसमें थोड़ी, लेकिन इस घर में ही हम ये घर इतना अच्छा बना रहे कि हम इससे बाहर निकलने का कभी वैरागी ना आए, तो दिक्कत है, फिर गलत भगवान को आपने चूज किया है, आप दूसरे भगवान की पूजन करो जो घर में रहते हो। हमारे भगवान तो यदि ग्रह प्रवेश आदि करते हैं और उनमें भी हम उनकी पूजन करते हैं तो एक तरीके से तो हम क्या बोले इसको क्या बोलते हैं कुछ अपशकुन बोलते नहीं क्या बोलते हैं ऐसा कुछ कर लेना, यानी कि बहुत डरावनी चीज कर ली हमने, क्यों, क्योंकि भगवान ने तो घर छोड़ने का उपदेश दिया है, आप घर बनाकर घर पे ही भगवान को लेके आ रहे हो, मतलब यही वहां पर भगवान और क्या करेंगे, परिणाम और क्या करे, ये भगवान ये घर जितनी जल्दी छूटे यही तो भावना होगी, राइट। इसको वितरागी देश पसंद है उसके लिए, लेकिन आप तो उस घर को भाई ये घर में सब बढ़िया चलता रहे, अरे जिन्होंने खुद का घर छोड़ा वो ऐसा आशीर्वाद कैसे दे पाएंगे, कॉन्ट्रडिक्शन बहुत है। हमने दुकान यदि खोली और उसमें हमने पहले भगवान को नमस्कार किया है तो हमने सबसे पहले यही बोलिए भगवान ये दुकान जल्दी से बंद हो जाए, राइट, हमें चलानी नहीं पड़े, हमारे भव खत्म हो, हम भिक्षा लेके जाए अपना धंधा करें ज्ञान सुख आनंद का, हम कहाँ तक इसकी कमाई करेंगे। तो यदि इनको हम बुलाते हैं तो भावना ही होनी चाहिए, नहीं तो फिर हम उनको बुलाए जिनकी दुकान है जिनके धंधे चलते हैं, हमें वो वाले भगवान पसंद है फिर। तो घर में शांति की कल्पना करेंगे तो वही मोक्ष मार्ग गड़बड़ हो जाएगा, घर में शांति मिलने लगेगी तो लोग वैराग्य लेके जाएंगे क्यों।
हाँ।
तो वो असंभव कल्पना है, हम घर पर रहकर शांत रह पाए तो इतने बड़े बड़े तीर्थंकरों के यहाँ शांति नहीं रह पाई उनके घरों में, राइट, शांतिनाथ कुंथुनाथ अरनाथ भगवान को ज्यादा पड़ा शैखंड की विजय के लिए, तो हाँ इनके पुण्य बहुत था और इनके तीन ज्ञान के धारी हैं, समृद्धि बहुत और इनके चित्त की प्रसन्नता रहती, तो इनके ऐसे कोई दुख नहीं है, लेकिन उन्होंने इसको दुखमय माना तब उन्होंने दीक्षा ली, क्षणभंगुर माना, ये नहीं है हमारे रहने का स्थान। तो तो इसमें यदि कल्पना होती है तो ये मूर्ता है, मूर्त दृष्टि, राइट? तो भगवानों में सच्चे देव में भी उनकी विकराकता सब कुछ भी हो, देखो ये अच्छा काम है कि हम हर एक चीज में इष्ट को नमस्कार करते हैं, बट हम वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमको पता हो कि ये काम तो हम मजबूरी में कर रहे हैं, हमारा काम तो इनके पद चिन्हों पर चलना है, विकराकता सर्वज्ञता आत्मानुभूति ये करना है हमको, उनको मोक्ष मार्ग में चलना है, इसकी स्मृति हो जाए ये। इसलिए ब्राह्मण लोग पहले क्या था, वो जनेऊ रखते थे ताकि उनको याद रहे हमेशा कि ये है भैया, हम ये हैं, हम कुछ भी करने जाएं हम ये हैं, हमने ये लिया हुआ है। ऐसे ही हम भगवान को स्मृति कर लेते हैं हर एक कार्य के पहले कि भाई हमें देखो बनना किसके जैसा है, ये राख के काम में हम फंस रहे हैं, इस कोयले की खदान में जा रहे हैं, बस ये प्रोटेक्शन कवच हम ले जाए एक बार कि हम इसमें ज्यादा नहीं फंसेंगे, हम भगवान को याद रखेंगे, उनकी विकराकता को याद रखेंगे, राइट? तो ये देव को समझने का है कि भगवान से कुछ मांगना नहीं, उनको समझकर कुछ उनकी महिमा उनकी विकराकता विज्ञान था। आजकल तो कैसा कि भाई यहाँ से भगवान जी के पानी निकल रहा है प्रतिमा पर, यहाँ पर छत्र हिल रहे थे अपने आप भगवान के, तो इस पर चमत्कार है। तो भाई तो आज भगवान की प्रतिमा से निकल रहा है, कल को किसी पत्थर से निकलेगा, तो हम किसी को भी जाके पूछने लगेंगे, ये कोई भगवान की पूज्यता के कारण थोड़ी है। तो अभी तो हमारे जितने भी अतिशय क्षेत्र हो रहे हैं वो सब ऐसे ही बन रहे हैं, कहाँ पर भगवान की क्या निकल रहा है, कहाँ पर क्या होता है, कहाँ कौन सी वर्षा होती है, ये सब मूर्ता है। भगवान की प्रतिमा इसलिए चमत्कारी लगना, भगवान की प्रतिमा इसलिए चमत्कारी होती है।
मैंने किसी से सुना था, वो बोलते कि वो मुक्तागिरी में वो चंदन के
वर्षा होती है अष्टमी चतुर्दशी के दिन, आई थिंक, राइट? तो ऐसा कहा जाता है, और फिर जाते हैं लोग तो उनको वहां पर उसके छींटे भी दिखते हैं, बट वी रियली डोंट नो कैसा है क्या है। बट ये हो भी, लाइक से हो भी, तो क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? ये सारे तो प्रकृति के अलग अलग सौंदर्य नहीं है, तो हमारे यहाँ तो बहुत चीजें होती है, अलग अलग भोग भूमि आदि में तो पूरी ऐसी प्रकृति इसलिए बनी हुई है। नंदनवन आदि जो है, मेरू के आदि आजू बाजू जो भी है, भद्रशाल वन, ये सब तो बहुत ज्यादा कुदरत की सुंदरता और चमत्कृति को लिए हुए है, लेकिन इनसे भगवान की महिमा थोड़ी है। कहीं चंदन की वर्षा हो रही है, कहीं अपनी आप प्रतिमा में से पानी निकल रहा है, कहीं चवर हिल रहा है, कहीं रात में ढोल बजने की आवाज आती है कुछ मंदिरों में, ऐसा बोला जाता है, होता होगा वो जो कुछ भी होता होगा, लेकिन भगवान की महिमा उससे नहीं है। आपको पता है त्रिनेत्र प्रतिमा को चमत्कारी क्यों कहते हैं? त्रिनेत्र प्रतिमा में चमत्कार होता है, पता है क्या होता है चमत्कार? ये आगम का वचन है, सम्यक दर्शन का पहला कारण है जिनेंद्र प्रतिमा का दर्शन करना। अब इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा कि पूरा संसार समझ के अर्थपुद्गल परावर्तन रह गया देखने मात्र से। सम्यक दर्शन से बड़ा चमत्कार क्या है? अनंत संसार एक क्षण में, अनंत से कुछ नहीं बचा, संख्या बचा थोड़ा सा एकदम, ये जिनेंद्र प्रतिमा का चमत्कार है कि उसको देखते सम्यक होता है, सम्यक की कारण है वो। तो जिनेंद्र प्रतिमा अपने स्वरूप के प्रति छंद के रूप में, ये ऐसा वितरागी, ऐसा सर्वज्ञ, ऐसा अनंत ज्ञान सुख वीरे का धारी मैं हूँ, ये मेरी प्रतिमा, ये मेरी प्रभुता है, ये मेरी ही आगामी कोई पर्याय की प्रतिमा है, राइट? तो ये उसका चमत्कार है कि जिसको देख के, एक एक प्रतिमा को देख के पता नहीं कितने जीवों ने सम्यक्त किया होगा, कितने, यदि कोई 800 साल पुरानी प्रतिमा है तो बताओ कितने जीवों ने 800 सालों में इसको देख के सम्यक लिया होगा, कितने जीवों ने इतने स्टेप का वैराग्य बुलाया होगा, अपने स्वरूप की स्मृति करी होगी, श्रद्धान किया होगा, ये उसकी महिमा, ये उसका चमत्कार है। बाकी सब तो जगत के बाकी इतने सारे, पानी पत्थरों से ही निकलता है ऊपर पहाड़ों में, तो पहाड़ों को हम पूजने लगे क्या? नदियां पत्थरों से ही तो फूट के निकलती है, पानी तो पत्थरों से, मतलब कोई बहुत पुराना पत्थर हो तो वो तो उसमें अंदर से पानी की धारा निकला है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो नॉर्मल साइंस है, भगवान का इससे कुछ लेना देना नहीं। तो देह में मूर्ता नहीं होती, हमें कोई चमत्कार इसलिए ना लगे, हमारे लिए भगवान ने एक ही चमत्कारी कार्य किया है कि उन्होंने हमको ये बता दिया। हम सोचते थे राजवेश छोड़ पाना पॉसिबल नहीं है, भगवान ने बोला देखो ये मैंने कर दिखाया, ये उनका चमत्कार है। जो जगत को असंभव लगे उनको उन्होंने इतनी आसानी से करके दिखा दिया, इतनी आसानी से। जितना भी होना कोई हंसी खेल है, हम छोटा सा राग नहीं छोड़ पाते। हम किसी दूसरी जगह जाए तो हमको याद आ जाती है यार अब बहुत दिन हो गए, चलो घर चलते हैं, वहां क्या होना होगा। हम थोड़ा सा कहीं किसी से बात कर ले तो हमको लगता है यार हम 10 दिन 15 दिन इनके साथ रहे अब तो बुरा लगेगा। जितना तो कोई हंसी खेल है, अपने माता पिता पत्नी पुत्र सबसे जिनके साथ अपन के जैसे 30-40 साल नहीं हजारों साल रहते हो, आयु उनकी करोड़ों वर्षों में है, और उसके बाद उनको छोड़कर ऐसी निष्प्रयता ऐसी वितरकता ले लेना। शरीर को कोई 3-3 दिन तक पकड़कर खा रहा है और विचलित नहीं हो रहा, ये कोई हंसी खेल वाली बात है? ये चमत्कार भगवान की वितरकता चमत्कार ही जो जगत के लिए असंभव है वो उन्होंने ऐसे हंसी हंसी में कर दिया। ये देव में सच्चे देव में उनकी वितरकता सर्वज्ञता ही अच्छी लगना, उसके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगना, ये सही अमूढ़ दृष्टि है। इसके अलावा कुछ और अच्छा लगना ये मूढ़ दृष्टि है, राइट? क्योंकि यही हुआ श्वेतांबर में, यही प्रॉब्लम है। वो भगवान की मूर्ति को इतना तो उनकी एक प्रॉपर सिर छुएंगे, आंख छुएंगे, नाक छुएंगे, प्रतिमा के पास बैठकर, राइट, पूरा करके पूजन करते हैं क्योंकि उधर से उनको लगता है कि पूरी शक्ति मिल रही है, उनको शांति मिल रही है। ये मूर्ता है, ये पागलपन है। ऐसे ही एक बार पाली थाना चले गए, जैसे हमारे ही बोलते हैं एक बार बंदे जो कोई ताई नरक पशुपति नहीं हुई भाव सहित बंदे जो कोई, राइट, कोई शिखर जी चला जाए तो नरक और पशुपति में नहीं जाता। ऐसे कैसे, ऐसा थोड़ी, हम तो कितनी बार चले गए, हम तो जाएंगे नहीं। शिखर जी संतों की भूमि है, वहां पर अरहंत सिद्ध परमात्मा विराजते हैं और उनके दर्शन से सम्यक दर्शन हुए बिना नहीं रहता, और जिसको सम्यक दर्शन होता है वो नरक और पशुपति में नहीं जाता। तो ये चमत्कार है, शिखर जी की कोई भूमि का चमत्कार नहीं है कि मिट्टी को चूके सब खत्म हो गया सब। वहां सिद्धो सच्चे देव का स्मरण जो कि सम्यक दर्शन में निमित्त है वो होता है, सम्यक तो होता है। इसके लिए जो वहां जाता है वो नरक पशुपति हीन मिट्टी में विकलत रह में नहीं जाता। ये चमत्कार है, तो हमको इनमें किसी में भी आकांक्षा और कोई भी वासना की इससे ऐसा थोड़ा तो हो जाएगा। ये बहुत कठिन है, ये बहुत कठिन काम, हम सब अभी निर्णय कर लेते हैं। देखो मतलब ये सारा काम जो अच्छे से किया, मतलब इसमें दृढ़ता की हम परीक्षा करें तो प्यार की कहानी आती है। प्यार था, उसको उसे जंगल में मुनिराज को देखा और उसको एकदम स्मृति हंसी और उसने मुनिराज से नियम लिया कि भाई मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, मैं रात में कुछ भी नहीं खाऊंगा पीऊंगा, ठीक है? तो आप मुनिराज चले गए, आप यार बढ़िया रहने लगा। धीरे धीरे आगे पहुंचे तो वहां बावड़ी थी, राइट? अब तो बहुत
आवाज दोबारा बहुत आती है।
तो था एक सियार ने नियम लिया कि हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, राइट? उसने लिया ऐसा नियम मुनिराज से और वो आया। अब उसको एक दिन बहुत ही प्यास लगी तो वो जहाँ पर था उस टाइम वहां पर एक बावड़ी थी पानी की। बावड़ी मतलब पहले क्या होता था, जैसे भी कुएं होते हैं ना, तो कुएं को बहुत बड़ा बना दीजिए तो उसमें उतरना इजी हो जाता है, उसमें सीढ़ियां होती है बहुत सारी, उसको बावड़ी बोल देते हैं। वो हमेशा थोड़ी नीचे होती है, अंदर होती है, गहराई में होती है। और ये वाली बावड़ी थोड़ी स्पेशल थी, इसके ऊपर पहाड़ भी था, पर्वत था, तो पर्वत के अंदर जाके पानी था, राइट? तो ये पानी पीने नीचे जाता तो अंदर दिखता कि अंधेरा है, राइट? तो उसको लगता रे रात हो गई, अब पानी कैसे पियेंगे, हम तो रात में पीते नहीं। तो ऊपर आ जाता, ऊपर दिखता तो अरे सूरज निकला हुआ है, पूरा प्रकाश है, उसको लगता अच्छा चलो दिन हो गया। फिर वो नीचे जाता, फिर दिखता रात हो गई। ऐसे ऊपर नीचे करते करते उसने पानी नहीं पिया। नीचे जाता तो अरे हम रात में कैसे पिए, हमारा नियम है, और ऊपर जाता तो अरे रात ही नहीं है। अब इतना दिमाग तो नहीं होता ना क्रेन शो में, राइट? तो बस ऊपर नीचे करता रहा वो, और कहीं उसने पानी ढूंढा नहीं। और ऐसे करते करते प्यास से उसका मरण हो गया। नाउ ये है, ये दृढ़ता है, राइट। ऐसे ही शिकारी को बोला भील को कि भैया देखो तुम सब खाते हो, कोई बात नहीं, तुम कौवा का नहीं खाते हो, तुम कौवे का मांस मत खाना। अब वो बीमार पड़ा और वैद्य ने बोला कि भैया देखो एक ही दवाई है, कौवे का मांस खाना सब ठीक हो जाएगा। तो अब ये पता पड़ेगा कि क्या है ये, कि उसने बोला भाई नहीं, लाइफ में एक नियम लिया है मैंने, मैं उसका तो दृढ़ता से पालन करूंगा। अब सारे मांस खाता है वो, राइट। आप उसकी सिचुएशन पर अपने आप को रखकर देखो, चलो यार हम सबको खा ही लेते, कोई नहीं एक दिन की बात है, बाकी तो हम खा नहीं रहे, चलो हम इसका छोड़ देंगे, अब से बंदर का छोड़ देंगे, हम कौए का खा लेते हैं आज से। ऐसा कर सकता था ना वो, चलो हम चार लोगों का छोड़ देंगे एक का खाकर, हम प्रायश्चित ले लेंगे। ही कुड हैव डन दैट, राइट। कोई रास्ता निकाल सकता था वो, चलो हम इसका खा रहे लेकिन इसके बाद हम कोई दूसरा नहीं खाएंगे, कि नहीं उसने वो छल नहीं किया, उसने वो छल नहीं किया, उसने जो नियम लिया वो ठीक है, एक तो लिया है हम इसको तो पालेंगे, और उसने मरण के आने पर भी वो नहीं छोड़ा। ऐसे ही ये मुक्तता का प्रकरण है। अभी हम सब जिनेंद्र जिसको मानते हैं सब ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता बहुत टाइप की बीमारियां होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिस एलिमेंट्स में ना तो एलोपैथी ना होम्योपैथी ना आयुर्वेदिक कोई आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलता, सब लोग बोल रहे थे भैया अभी कुछ नहीं है, और फिर एक अलग ट्रीटमेंट निकल के आता है इंडिया में, भैया यहाँ पर चले जाओ और एक बार यहाँ पर थोड़े दर्शन कर लेना सब ठीक हो जाएगा, या वहां पर चले जाओ, वहां पर वो एक बार कर देते हैं कुछ और लोग ठीक हो जाते हैं, एंड फिर लोग आ जाएंगे आपके आजू बाजू, राइट। अब यहाँ पर इस मूर्ता की बोधी, अभी हमको लग रहा है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, पर जब सिचुएशन आती है ना, आप मत करो लेकिन आपका इकलौता बेटा हो छोटा सा, आप बहुत जवान हो, आपका छोटा बेटा है, बहुत मुश्किलों से आपने उसको नाजों से पाला है, राइट। एंड अब उसकी चलो कोई बात नहीं, हम नहीं जाते, हमारे बच्चे को थोड़ी कुछ पता है, चलो अच्छा हम नहीं ले जा रहे, तुम ले जाओ, तुम्हारे तो कुछ नियम नहीं है इसके। ये वाली दृढ़ता उस समय, ये अमूढ़ दृष्टि मतलब ऐसी नहीं होती, किसी भी परिस्थिति में सच्चे देश की वितरकता और विज्ञानता को अपने राग द्वेष के हितों के लिए मलिन नहीं करना, ये मूर्ता का अभाव है। हम थोड़ा सा भी इधर उधर ढीले पड़ेंगे, ठीक है चलो हम प्रायश्चित ले लेंगे, या हम ऐसा कर लेंगे, या हम वहां जाएंगे लेकिन हम थोड़ी कुछ पढ़ेंगे, हम नमस्कार नहीं करेंगे, वो सामने वाले को जो पढ़ना होगा कर लेगा, ये सब मूर्ता है, ये कुगुरु कुधर्म में जाएगा, राइट। तो हमको ये बहुत अच्छे से आज अभी हमको अपना निर्णय कर, सामने वाला क्या कर रहे कोई बात नहीं, हमारा क्या एक फर्म बिलीफ है, हम क्या करेंगे यदि हमें ऐसी सिचुएशन हुई, इफ अ सिचुएशन कम्स व्हेन समबडी सेज कि भाई वहां चले जाओ एक बार, वो कर देते हैं, आई डोंट नो आप लोग इतना कुछ जानते हैं, इंडिया में जो लोग रहते हैं उनको पता रहता है क्या होता है, यहाँ तजारा जी है और यहाँ पर पता नहीं बहुत सारे हैं, जहाँ पर बहुत सारे प्रकार के दरबार लगते हैं, चतुर्दशी की रात को, अष्टमी की रात को अलग अलग तरीके की आरती होती है जिनेन्द्र देव के सामने, हाँ, और फिर भगवान वहां मन्नतों को पूरा करते हैं, किसी की भी व्याधि हो तो उसको मिटा देते हैं, ये सब होता है, ये मूर्ता है, इस पर नहीं फंसना, ये दिक्कत है, ये मतलब बहुत वीरता का काम है, राइट। हेलो,
हाँ, हम बहुत छोटे थे ना तभी हमने वैसे सुना था कि यू नो कोई कोई देव देवी के पास जाते, फिर मांगते कि बस इसको ठीक कर दो, वो ठीक कर दो वगैरह,
हाँ, बहुत होता है, राइट। इस पर रियल टेस्ट कम्स, क्या हम जब देख रहे हैं सामने के सब गलत है, तो हमको गुरु देव को धर्म के आयतनों में भी नहीं जाना है, बाकी बात तो छोड़ दें, हम उनके समीप नहीं जाना है, क्यों, ऐसा नहीं कि हमारे उनसे कोई बुराई है, कि वो बहुत बुरे होते हैं, वो बुरे लोग होते हैं, नहीं होते, बुरे तो कोई नहीं होते, ठीक है, लेकिन वहां जाने पर हमें करे कि हमारी इस पर हमारी श्रद्धा पर प्रश्न चिन्ह न लग जाए, और हमारी प्रामाणिकता पर दिक्कत आती है उसमें, राइट। कि ये लोग हमें, ये हमारे स्थान नहीं है, हमको दूध लेना है तो हम मांस की दुकान पे दूध बिकेगा तो थोड़ी देंगे, कैसे ले पाएंगे हम, ठीक है, हम दूध ही तो ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप उस स्थान का भी तो विचार करो, कहाँ से लिया जाता है दूध, राइट? तो हर एक चीज का स्थान है, तो हम जाएंगे तो भी हम उन स्थानों में नहीं जाएंगे जहाँ पर श्रद्धा के लुटेरे बैठे हो, जहाँ पर ऐसे ऐसी वहां पर थोड़ी थोड़ी देर पर भाई यहाँ पर ये कर लो, यहाँ पर ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये धागा बनवा लो तो ये हो जाएगा, जी नहीं, हमको इन जगहों पर जाना ही नहीं, ये हमें बाहर का प्रिकॉशन है, ये मूर्ता से हटकर, राइट? तो ये पहला देव संबंधी मूर्ता हुई, ऐसे ही गुरु संबंधी, और गुरुओं का तो हम कई बार जिक्र कर चुके हैं, आजकल बहुत ज्यादा है ये, आप देख लीजिए पूरा जो इंडिया में पूरा जो आजकल टूरिज्म का क्राउड है जो ऊपर साइड आ रहा है, दैट इज ओनली फॉर योगा एंड ऑल, तो बढ़िया, सबको लाइक थोड़ी देर आके आंखें बंद करके पूरा योगा करते हैं, प्रॉपर वाला योगा, और उनको बड़ा पीस लगता है, फिर उस पीस का डिस्कशन वो लोग पे नशा करके करते हैं कि चलो अब बैठ कर नशा करते हैं थोड़ी देर, शांति मिली उसको थोड़ा, और सो लाइक ये बहुत ही मतलब एक दुर्भाग्य है कि धर्म का एक पक्ष बता दिया जाए जो कि शरीर का हो, और जो धर्म का आंतरिक पक्ष है वो हमारे चारित्रिक, हमारे क्या बोले, आचरण के उत्थान में हमें कुछ आगे ना बढ़ाए, तो ये बहुत जहर बन जाता है, तो ये को गुरु के आयतन हो गए कि हमको पीस मिलेगी, कुछ अच्छा मिलेगा, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत सारे कोर्सेज हो गए हैं, सेल्फ लव के और सेल्फ कॉन्फिडेंस के, कैसे सोसाइटी में प्यार से रहने, इन सब के, ये सब सब कुछ गुरु में जाएगा, और ये सारी क्रियाएं कुधर्म में चली जाएंगी, जो धर्म बुद्धि से सुख बुद्धि का योग वगैरह करते हैं, हेल्थ के लिए करिए, हेल्थ एक्सरसाइज है, बढ़िया है, लेकिन इससे हम कुछ एनलाइटनमेंट मिल जाएगा, नो, ऐसा कुछ है ही नहीं, धर्म धर्म योग से नहीं होता, जब धर्म प्रकट हो प्राथमिक भूमिका में, फिर आगे मुनिराज लोग जो कुछ भी करेंगे वो सब योग कहलाएगा, बट योग करके धर्म प्रकट नहीं होगा, धर्म तो निर्णय की वस्तु है, विचार की वस्तु है, राइट? तो धर्म की सारी क्रियाएं, राइट? जैसे 500 साल पहले तक ये शांति धारण वगैरह इतना नहीं, हम लोग जब ध्यान वगैरह करते थे तो आखिरी में वो जो विधानों की पूरी वो होती है प्रोसेस, उसके आखिरी में होती है शांति धारा, इसको कई बार हवन भी बोलते हैं, राइट? लेकिन अभी देखो वो इतना ट्रेंड पर पड़ गया, और अभी कितनी बुरी हालत है आपको इंडिया में, तो ऐसी हालत है, और भगवान के प्रक्षाल करने हो तो अब बोलियां लगती हैं शांति धारा की बोली, तो बेचारे जिनकी ताकत नहीं है उनको तो कुछ करने ही नहीं मिलता, फिर तो बहुत ज्यादा विसंगतियां आ गई हैं, इसके कारण जिन मंदिरों में बोली नहीं लगती फिर उस मंदिर में लोग जाने लगे हैं, बहुत इनका वो बहुत बुरा होता है, मतलब बोली लगने तक वो लोग कपड़े चेंज नहीं करते, लग गई हमारी बोली, चलो अब हमारा परिवार चेंज करके आएगा फिर भगवान के शांति धारा या प्रक्षाल होंगे, तो ये सब धर्म नहीं है, ये धर्म का व्यवसायीकरण कमर्शियलाइजेशन है, धर्म भावनात्मक था हमने उसको धनात्मक बना दिया है, राइट? ये सब धर्म मूर्ता है, फिर लोग अपने घर से डिब्बे लेकर आएंगे और उसमें पूरा क्या बोलते हैं गंधोदक भर के लेके जाएंगे, फिर घर का दिन भर यूज करेंगे उसको, अलग अलग जगह लगाते रहेंगे, ये सब चल रहा है अभी, क्यों? क्योंकि शांति धारा का गंधोदक सारे पापों को मिटा देगा, लेकिन ये सब धर्म मूर्ता है, सम्यक दृष्टि को ये पागलपन नहीं होता, क्योंकि उसके पहले निशंकता और निकांक्षता आ चुकी है, तो उसको जगत में कुछ सही होने की आकांक्षा तो है नहीं और भय कुछ उसको है नहीं, तो वो अपने पागलपन को अच्छे से दूर कर देता है, उसको ये जगत की क्रियाओं से, जगत की किसी चीज से उसको बाख्शा ही नहीं है, राइट?
हाँ.
ये सब जगत की आपको जो भी क्रियाएं भी हमको आर्टिफिशियल या सुपरफिशियल लग रही है, ये सब कुधर्म है, भले भगवान के मंदिर में हम करने लगे हो, लेकिन ये सब धर्म नहीं है, ये सब मूर्ताएं हैं, हमको ये नहीं करनी है, और यदि ये होती हो तो हमको दूर हट जाना है, हमको इनसे बिल्कुल कोई लेना देना हमारा इनसे नहीं, भगवान का जो मंदिर है वह समव शरण है, वहां पर सबसे बड़ा कोई है तो वे भगवान है, और भगवान के दर्शन को तो त्रियंश भी सुलभता से आते हैं, तो यदि कोई उनके दर्शन पर आवरण लगाता है, उनके स्पर्श पर कोई प्रतिबंध लगाता है, तो बहुत ऊंचे अंतराय कर्म को बांधता है, उसको नहीं समझ में आ रहा उसका दर्शनावरण का और अंतराय कर्म का कितना तीव्र बंद हो रहा है। तो ये लोग जो ये सारी व्यवस्थाओं में भगवान के दर्शन को उनके स्पर्शन को इतना दुर्लभ बना रहे हैं, वो तीव्र अंतराय कर्म का बंद करते हैं, उनके बहुत बुरा होता है फिर बाद में कोई काम नहीं हो पाता उनके।
मुझे मुझे यहाँ ये समझ नहीं आई एकदम कि आप बोलते हैं कि वो बोली बोलते हैं तो उन लोग ही भगवान का प्रक्षाल करते हैं, ऐसा है कि वो शांति धारा वो ऐसा, हाँ वो ज्यादा पानी डालते हैं और वो
मतलब हर बार बोली दिन भर की मतलब सारे फंड वगैरह में हर चीज की बोली होने लगी मोस्टली मंदिरों में। यहाँ पर शांति धारा से तो उससे मंदिर के लिए फंड भी इकट्ठा हो जाता है इन लोगों ऐसा मानते हैं। तो जो मित्र पक्ष के जितने भी मंदिर हैं उसमें बहुत मतलब बहुत तेजी से अभी अभी हो गया एक दो सालों में, बिकॉज टीवी का पेनिट्रेशन इतना है और टीवी में इसका बहुत प्रचार किया जाता है। तो जो लोग मंदिर नहीं जा पाते हैं वो टीवी में खोल लेते हैं और उसकी शांति धारा देखते हैं। तो ये मतलब बहुत तेजी से पेनिट्रेट हो गया है ये इंडियन मार्केट में, जो जैनिज्म को इतने सही तरीके से कॉमर्शियलाइज किया गया है, मतलब ये भी अपने आप में स्टडी है बिजनेस की। हाँ बताइए आपका क्या क्वेश्चन है इसमें।
नहीं नहीं वो मगर तो फिर दूसरे प्रक्षाल वगैरह नहीं करते, वो जिसने बोली ली वो ही
दूसरे बाद में करते हैं। नहीं बोली जिन्होंने ली वो पहले करते हैं और फिर दूसरे बहुत, लेकिन जैसे बढ़िया जी आप कुंडलपुर जाओगे राइट, तो दूसरों को मतलब बस जल्दी 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 मतलब बहुत मुश्किल है वहां पर भगवान को छूने तो देते ही नहीं राइट। और जो शांति धारा करते हैं बस उनको ही मेन मिलता है, उनके प्रॉपर उनको मुकुट पहनाए जाते हैं, उनको कलश देते हैं प्रॉपर, मतलब आप आओगे कभी देखोगे तो आपको पता पड़ेगा, देखने पर आपको पता, वो एकदम एक बिजनेस बन गया है। लाइक भगवान की स्तुति मतलब हम शॉर्ट में कर देंगे प्रक्षालन पार्ट, लेकिन उनकी बोलियां चलेंगी 20 मिनट तक। हाँ भाई आपको ऐसा कभी नहीं मिलेगा, फिर बीच में एक स्टोरी सुनाई जाएगी कि पिछले हफ्ते वो आए थे, वो अस्पताल में एडमिट थे उनके भाई, उन्होंने शांति धारा करी यहाँ से, यहाँ से दंडोदक ले गए और हॉस्पिटल में जाकर उनको उन्होंने लगाई और आज देखो वो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, ये शांति धारा का है। हाँ पहली बोली कितने रुपए से, 25,000 रुपए एक।
शांति धारा से वैसा होएगा ये सारा एडवर्टाइज करते,
ये मूर्ता है ये इसका ये, और भयंकर, और सामने ऐसा नहीं है कि कोई पागल लोग बैठे हैं, सामने माताएं बैठी हैं आर्य का माताएं, उनके सामने ये बोली चल रही है, स्टोरीज चल रही हैं, आप समझ रहे हो ये लेवल हो चुका है अभी। ये हमारे कोई युगल बाबू जी वगैरह के सामने ऐसा कुछ होता तो पता नहीं क्या हो जाता भाई, तत्व के विरुद्ध भगवान के सामने ऐसी बातें करते हम लोग कहाँ सुन पाएंगे। बताओ जिन्होंने इस मार्ग को अंगीकार किया वो लोग इसका प्रोत्साहन कर रहे हैं, फिर क्या होगा राइट। तो ये बहुत ही मूर्त है, ये मैं बोल रहा हूँ कि अमूर्त दृष्टि अंग बहुत हल्की चीज नहीं है, और ये हमको आज निर्णय लेना पड़ेगा कि कुछ भी होगा हमें भगवान के दो ही गुण है और जिन मार्ग में दो ही क्रियाएं हैं, जो वितरक्त और सर्वज्ञता की विशुद्धि की वृद्धि करें, इसके अलावा जो कुछ भी संसार सुख की क्रियाएं यदि देते हैं वो हमको करनी ही नहीं। हम यदि धर्म भी करेंगे तो इसलिए नहीं कि हमें संसार में पुण्योदय मिलेगा, इसलिए क्योंकि हम मोक्ष मार्ग में आगे कुछ बढ़ेंगे। ये इतना कन्विक्शन हो जाना ये अमूल दृष्टि है, और ये बहुत हमको इतना कटर एकदम इतना निर्णय होना चाहिए कि सामने हाथी खड़ा है और वो कुचलने को है, और थोड़ा मंजिल से बोला जाए कि भाई अभी तो आप मान लो, नहीं वो धर्म से समझौता नहीं है कुछ भी। धर्म क्या अकलन निकलन को बोला जाए कि भाई ठीक है भगवान की प्रतिमा को लांग जाओ, कैसे लांग जाए हम, फिर बोला जाए कि नहीं भाई आप तुम एक बार बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लो, तुम्हें नहीं तो सुबह फांसी है, कैसे कर ले हम, नहीं हमने ये अमूर्त दृष्टि है ठीक है। सामने सीधे सीधे रात भर जेल में बंद है, सामने कल सुबह उनको कर दिया जाएगा मौत के हवाले, बट कितने निश्चल वो बच्चे बच्चे हैं वो, कितना उनका ये है हमारा धर्म कि मतलब नहीं अब यही है, ये इतनी अमूर दृष्टि, मतलब क्या जा रहा है देख, आप देखना समझना, अखिल निकलन बुद्ध स्कूल में गए थे पढ़ने, तो वो रोज बुद्ध की प्रेयर नहीं पढ़ते होंगे क्या, बुद्धम शरणम गच्छामि, ऑब्वियसली पढ़ते होंगे राइट, पूरा उनका करते होंगे नहीं करते होंगे, उनको तो वेश बदल के रहे थे ना, उनको तो प्रूव ही करना था कि सबसे अच्छे बॉर्ड स्टूडेंट वो है,
वो
ये सब करते हुए भी
वो उन लोग उन लोग बुद्ध स्कूल में क्यों पढ़ने गए थे, तभी जैन स्कूल्स के नहीं
उस टाइम पर, नहीं 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 नहीं, अरे ये लोग बहुत जैन धर्म के बड़े प्रकाश विद्वान थे, बट बुद्ध धर्म उस टाइम बहुत डोमिनेटिंग हो गया था, सारे राजा बुद्धिस्ट हो गए थे राइट, और उनका जो लिटरेचर था वो किसी दूसरे को पढ़ाया नहीं जाता था, बौद्धों को ही पढ़ाया जाता था, और तो उन्होंने बोला कि यार इनके धर्म की लूपहोल्स निकालने हैं तो इसको पढ़ना पड़ेगा, और ये तो जैनों को पढ़ाते ही नहीं क्योंकि इनको पता है जैन ऐसे ही काट देंगे इनके जितने भी कर्म होंगे उनको, तो उन्होंने बोला कि नहीं अगर हमको सच में जैन धर्म की स्थापना करनी है तो हमको पहले बुद्धिज्म को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा राइट, ऐसे ही जाके हम नहीं बोल सकते कि आपका धर्म कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है, ये विद्वानों की रीति होती है, वो पहले सामने वाले को पूरा सुन लेते हैं समझ लेते हैं और फिर देखते इसमें क्या गलती है, तो उसके लिए बुद्ध धर्म को पढ़ने गए, नहीं वो तो बहुत बड़े एक बार में सुन के याद हो जाए, जैन धर्म का बचपन से उनको अभ्यास है सारे शास्त्रों को, तभी तो जो उनके गुरु को समझ में नहीं आया जीवा जीवा नास्ती, इन्होंने स्याप शब्द लगा के अपने लिए समस्या खड़ी कर ली, बट उनके तो सब कुछ क्लियर था ना, बट सोचने वाली बात यह है कि जब वो पढ़ रहे हैं वहां पर सालों साल उनकी यूनिवर्सिटी में, तब वो रोज तो प्रेयर बुद्धिज्म की करते होंगे ना, उन्हीं का वेश धारण किया, उन्हीं के रूप राइट सब कुछ कर रहे हैं, तो उनकी रहित क्या थ्री हुआ होगा, उनकी मूर्ता नहीं हुई होगी, कि दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, कि ये बाहर में झोंक तो किसी भी चीज का हो सकता है लेकिन अंतरंग श्रद्धा क्या है, जब उसका टेस्ट होगा तब पता पड़ेगा बाहर का सब झूठा है राइट, उनका जो लक्ष्य है वो कितना क्लैरिटी है उनके पास, कि हम जा रहे हैं हम एकदम कोयले की खदान में जा रहे हैं, हम बिल्कुल विपरीत आयतन में जा रहे हैं, इसलिए जो छह आयतनों में नहीं जाने का निषेध है ना, ये मूलतः मुख्यतः मिथ्या दृष्टि जीवों की है, क्योंकि उनकी श्रद्धा का ठिकाना नहीं है, आप जाओगे आप बह जाओगे, लेकिन ज्ञानी पुरुष है तो समंत भद्राचार्य वो शिव जी के मंदिर में ही पुजारी बन के दीक्षा, जब उनको मसमत गाजी रोग हो गया तो वो तो अनायतन में ही रहे ना, कि नहीं उनके पास ये अंगूर दृष्टि, उनके पास है शील्ड, बुलेट प्रूफ है वो राइट, हम लोगों के लिए है कि भाई आप जाओगे आप चार चमत्कार देखोगे आप एकदम पिघल जाओगे आप मत जाओ, यू आर नॉट केपेबल, आपका दिल अभी कमजोर है, आपने निर्णय नहीं किया है, ये लोग जाएंगे और नमस्कार करेंगे तो वो पिंडी फट जाएगी, भगवान बाहर निकल के आएंगे, इनका नमस्कार वो कहाँ झेल पाएंगे, इनका ये दृढ़ श्रद्धा है, तो वो वहां सब किया उन्होंने, लेकिन जब आई आखिरी में मौत और जैनिज्म के सामने चूज करना पड़ा, उन्होंने जैनिज्म को चूज किया, मौत गई थी कि आएगी तो आएगी, जो है हम क्यों छोड़े अपने जो हमने सही माना है, ये अमूर्त दृष्टि है, ये कन्विक्शन है, ये बिलीफ है, ये हमारे जीवन में आना चाहिए, कुछ हो जाए हम इतना सुंदर अमृत, ये जो चली जा रहा है शरीर इसके लिए इतना सुंदर अमृत को क्यों फील है, होगा हम जिनेंद्र देव से दूर नहीं जाएंगे, हम जिनवाणी के वचनों के विरुद्ध नहीं जाएंगे, कोई मारता हो मारे जाता हो जाए शरीर रहे ना रहे, ये समय दृष्टि का श्रद्धान है। इतना सारा समय हो गया, ठीक है चलिए कोई क्वेश्चन हो तो करेंगे, अमूर्त दृष्टि अंतर हमारा डिस्कशन हो गया, अब आगे से हम कामाधिक विश्व का चित्त से आगे के अंक की बात करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए चिन्हवाई माँ को वंदना शत बार है, उसके लिए चिन्हवाई माँ को वंदना शत बार है।